जमानों की उमंग बाब नंबर 32। एक सूबेदार। जिस बादशाह के मुलाजिम को यसु ने शिफा बख्शी थी, उसे यसु ने यह कहा था, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो, हरगिज ईमान ना लोगे। यूहन्ना 48:4। यसु को इस बात का रंज था कि उसकी अपनी कौम के उप से मसीह मऊद तस्लीम करने के लिए निशानात और अजायबात देखने का मुतालबा करते हैं। वो उनकी बेयकीनी पर अक्सर हैरान रहता था, क्योंकि बावजूद मौजज़ात देखने के वो यकीन न रखते थे कि यही आने वाला है। मगर अपनी कौम के लोगों के ईमान के बरक्स वो रूमी सूबेदार के ईमान से बड़ा मुतासिर हुआ। क्यों? इस सूबेदार के दिल में मसीह की कुदरत के बारे कोई सवाल न था, यहां तक कि उसने ये भी ना कहा कि चलकर मेरे घर आ और वहां मौजज़ा दिखा, बल्कि उसने सिर्फ ये अर्ज किया, सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। मत्ती 8:8। सूबेदार के खादिम पर फॉलेज का हमला हुआ था और वो मरने को था। रूमी कौम नौकर गुलाम की हैसियत देती थी, उनको मंडियों में खरीदा और सींचा जा सकता था। मालिक नौकरों पर हर तरह का जुर्म ढाते थे, उनको लान तान करना अपना हक समझते थे। मगर ये सूबेदार अपने खादिम पर बड़ा मेहरबान था, उसे नौकर से बड़ी उनुस थी, इसीलिए वो उसकी जल्द शिफा का खाहां था। उसका ईमान था कि यसु उसे शिफा दे सकता है। बेशक उसने यसु को कभी नहीं देखा था, मगर जो कुछ उसने यसु के बारे सुना, उसी की वजह से उसके दिल में ईमान पैदा हुआ। नीज यहूदियों के रोखे फीके इबादत के दस्तूरात के नावजूद, सूबेदार यहूदियों के मजहब को अपने मजहब पर फौकियत देता था। उसने उस दीवार को पेशतर ही गिरा दिया था जो फातेह और मफ्तू के दरमियान हायल होती है। वो खुदा की इबादत की बड़ी कदर करता था, इसीलिए वो उसके परस्तार यहूदियों पर बड़ा मेहरबान था। यसु की तालीम, जिसकी खबर लोग उसे देते रहते थे, में उसने अबदी जिंदगी की राहें पाईं। उसने जान लिया कि हमारी रूह को इसी तालीम की जरूरत है। उसकी तमाम रूहानी खुवा बेदार हुई, चुनाचे उसने यसु की तालीम को बदलो जान कबूल कर लिया। इसके बावजूद वो महसूस करता था कि वो यसु की हुजूरी में आने के काबिल नहीं, इसीलिए उसने यहूदियों से दरखास्त की कि वो उसकी सफारिश करें ताकि उसका खादिम बीमारी से शिफा पाए। जूं ही यसु कफरनहूम में दाखिल हुआ, यहूदी बुजुर्गों ने यसु के सामने सूबेदार का मसला पेश किया और उसकी सफारिश करते हुए कहा कि वो इस लायक है कि तू ये उसकी खातिर करे। लूका 9:7। उन्होंने यसु को मजीद बताते हुए कहा कि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनाया। यसु फौरन उसके घर की तरफ चल पड़ा। चूंकि उसे भीड़ में से होकर गुजरना था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। लिहाजा सूबेदार को उसके आने की खबर मिल गई, चुनाचे उसने यसु के लिए पैगाम भेजा, ऐ खुदावंद, तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। लूका 6:7। सूबेदार के कहने के बावजूद यसु उसके घर की तरफ रवा रहा। ये जानकर यसु उसके घर आ रहा है, उसने उजलत की और रास्ते में उससे मिलकर अर्ज किया, इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। लूका 7:7-8। रूमी हकूमत की तरफ से मुझे इख्तियार दिया गया है और सिपाही मेरे इख्तियार को तस्लीम करते हैं। इसी तरह खुदावंदे खुदा ने तुझे इख्तियार बख्श रखा है और कायनात तेरा हुक्म मानती है। तू बीमारी को हुक्म है तो वो तेरा हुक्म मानती है, और आसमानी फरिश्तगान को हुक्म देता है तो वो तेरे कहने पर शिफा बख्श देते हैं। बस तू जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मत्ती 10:8। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। मत्ती 13:8। यहूदी जिन्होंने इस सूबेदार की यीशु से सफारिश की, ये जाहिर किया कि वो खुशखबरी की रूह से कितने दूर हैं। वो ये नहीं समझते थे कि खुदा के रहम में ही उनकी भलाई है। यीशु से भी उन्होंने इसलिए सूबेदार की सफारिश की थी क्योंकि उसने उनकी माली मदद की, उनके इबादत खाने को तामीर करवाया, उनकी कौम से मोहब्बत दिखाई। यहूदी बुजुर्गों ने कहा कि वो इस लायक है, जबकि सूबेदार ने बड़ी हलीमी से अर्ज किया कि मैं इस लायक नहीं, क्योंकि उसका दिल खुदा के फजल से खासा मुतासिर हो चुका था। चुनांचे उसने अपनी नालायकी और कमजोरी को पहचाना, इसलिए उसने मदद हासिल करने में कोई आर महसूस ना की। उसने अपनी किसी नेकी और भलाई पर एतमाद ना किया, बल्कि सिर्फ यीशु की सीरत पर उसे एतमाद था जिसे उसने मजबूती से थामे रखा। इसी तरह से हर गुनाहगार यीशु के पास आ सकता है। उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुदुस से हमें नया बनाने के वसीला से। ततुस 5:3। जब इब्लीस आपसे ये कहे कि तुम गुनाहगार हो और खुदा से बरकात पाने की तुम्हारी तमाम उम्मीदें मसदूद हो गई हैं, तो उसको कहिए कि यीशु मसीह दुनिया में गुनाहगारों को बचाने आया। हम में वस्फ नहीं जिसके बायस खुदा हमें पसंद करे। हमारी बेबस हालत ही हमारी सिफारिश है। हमें निजात के लिए सिर्फ सलीब की जानिब तकना है। यहूदियों को बचपन ही से मसीह मौत की खिदमत के बारे हिदायत दी जाती थीं। कदीम आबाई बुजुर्गो अंबिया का इल्हामी कलाम और अलामत रस्मी कुर्बानियां, ये सब कुछ उनकी मलकियत था, मगर उन्होंने उस रोशनी की कदर ना की जो उन्हें हासिल थी, और अब उन्हें अपने मतलब की कोई चीज यीशु में नजर ना आई। इसके बरक्स रूमी सूबेदार, जिसने बुत परस्ती में आंखें खोली और बुत परस्ती की तालीम पाई, सिपहगरी का पेशा इख्तियार किया, यूं वो रूहानी जहत से कट गया। मगर यहूदियों के तासुब ने उसे मजीद रूहानियत से दूर कर दिया। इसके बावजूद उस शख्स ने वो सदाकत पाई जिसकी तरफ से अब्राहम की औलाद यहूदी नाबीना ही रही। सूबेदार ने इस बात की इंतजार न की कि यहूदी येसु को कबूल करे जो मसीह मऊद होने का दावे करता है। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, यूहन्ना 9:1। जैसे ही वो नूर रूमी सूबेदार पर चमका, गो वो दूर से इलाका रखता था, फिर भी उसने हकीकी नूर के जलाल को पहचान लिया। यीशु मसीह ने बड़ी संजीदगी से देखा कि इंजील की खुशखबरी गैर कौमों में भी असर कर रही है। गैर कौमों से जो भीड़ उसके गिर्द जमा हो चुकी थी, उस पर यीशु ने पुरमुसरत निगाह की। मगर उसने यहूदियों पर, जिन्होंने सदाकत को रद्द कर दिया था, बड़े रंज से देखा। फिर यीशु ने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पिछम से आकर अब्राहम और इजहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बाहर रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 11:8-12। आज भी शुमार ऐसे हैं जो खुद को ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहां रोना और दांतों का पीसना है। बुत परस्तों की सरजमीन से बहतेरे यीशु को कबूल कर रहे हैं, जबकि मसीही ममालिक के मसीही लोग नूर को रद्द कर रहे हैं। कुफ्र नहूम से 20 मील दूर नाइन नाम एक गांव आबाद था। यीशु उसकी तरफ चल दिया। अपस के शागिर्दों के अलावा कई और लोग भी उसके हमराह थे। कुछ लोग रास्ते में से उसके हमराह हो लिए, जो अपने बीमारों को शिफा के लिए उसके पास लाए थे। बाज उससे जिंदगी की बातें सुनने के लिए उसके हमराह हो लिए। बाज उससे सादिर होने वाले मौजजात देखने की गर्ज से भीड़ में शामिल हो गए। उनमें से बेशतर ये समझते थे कि इसमें इतनी अजीबो गरीब कुदरत है जो उसे बनी इसराइल का बादशाह बना सकती है। भीड़ उसके साथ पहाड़ी रास्तों से होती हुई नाइन के गांव की तरफ रवान दवा थी। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव से बाहर जनाजा आ रहा है और गमजदों के कदम आहिस्ता आहिस्ता शहर खामोशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मातम करने वालों ने हशर बरपा कर रखा था। ऐसे लगता था जैसे इस जवां मर्ग पर तमाम का तमाम शहर मातम करने और बेवा मां के साथ हमदर्दी जताने के लिए उमड़ आया हो। ये मुर्दा शख्स कबूल उस बेवा का वाहिद सहारा था जो उससे जालिम मौत ने छीन लिया। मां किसी की तसल्ली कबूल नहीं करती थी क्योंकि उसका चैन लुट गया था। उसे देखकर खुदावन को तरस आया और जब वो आहोजारी करती हुई यीशु के करीब पहुंची तो यीशु ने उसे कहा, मत रो। यीशु उसके गम को खुशी में तब्दील करने को था। उसने जनाजा को छुआ। जनाजा लेकर जाने वाले साकिन खड़े थे। रोना चलाना और आहो नाला करना फौरन मौकूफ हो गया। जनाजा के गिरदा गिर्द बहुत बड़ा हुजूम था, जिसमें से एक ग्रोह ऐसा था जिसको यीशु मसीह ने इबलीस और बीमारी से छुटकारा दिलाया था, और दूसरा ग्रोह जिसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मौत भी उसके ताबे है। यीशु ने बड़ी साफ और सरी आवाज में हुक्म दिया, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो आवाज मुर्दा के कानों को चीर कर एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गई। उसने आंखें खोल दी। यीशु ने उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया। जो शख्स मर गया था उसकी नजरें अपनी मां से दो चार हुईं, जो कुछ देर पहले आह नाला कर रही थी। मां बेटा एक दूसरे को खुशी से चिमट गए। भीड़ ऐसे खामोश हो गई जैसे उसे सकता हो गया हो। सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बढ़पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। जिस चारपाई या गाड़ी पर जनाजा लाया गया था उसे खाली शहर में फातेहाना अंदाज में वापस लाया गया और ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गुर्दोनवा में फैल गई। लूका 11:7-17। वो जो नाइन शहर के फाटक के करीब दुखी मां के पास खड़ा था वो हर मातम करने वाले के करीब होता है। हमारे गमों से उसका भी दिल दुखता है। उसका मोहब्बत और रहम से मामूर दिल तब्दील है। जिसके कलाम से नाइन की बेवा के बेटे में जिंदगी आ गई उसके कलाम में अभी भी वही जिंदगी बख्श कुदरत है। उसका कहना है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जो कोई भी उस पर ईमान रखता है उसके लिए वो जिंदा नजात दहिंदा है। मैं मर गया था और देख अबदां आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मुकाशवा 18:1। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तब वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के अर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। इब्रानियों 14:2-15। जब खुदा का बेटा मुर्दों को जिंदा रहने का हुक्म देता है तो इबलीस उन्हें अपने कब्जा में नहीं रख सकता, और ना ही वो किसी रूह को रूहानी मौत दे सकता है जब वो ईमान के जरिया यीशु के कलाम की कुदरत को कबूल कर लेती है। खुदामंद उन सब को जो गुनाह में मुर्दा है कहता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इफ़सियों 14:5। ये कलाम अबदी जिंदगी है, मगर ये जिंदगी उसी को नसीब होगी जो उस कलाम पर ईमान लाएगा। यीशु ने हमें तारीकी की कुव्वत से नजात बख्शी है और उसने हमें अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। इब्सी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। कलीसियों 13:1। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। रोमियो 11:8। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। एक थसलनकियों 16:4-17। यही वो तसल्ली और तशखुसी का कलाम है जिसके जरिए वो चाहता है कि हम खुद तसल्ली पाएं और एक दूसरे को तसल्ली दें।